सनात कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतमलम् आराध्य भक्त्या लभतमलम् तज् ज्ञानं जत ब्रह्मा परम् शान्ति एष सद्योपवने शमेत्ये सनात कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतमलं तत् ज्ञानं जत ब्रह्मा परं विदन्ति। उपवने शमेत्ये सनात कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतमलं तज् ज्ञानं जत ब्रह्मा परं विदन्ति। एष सद्म उपवने शमेत्य सनात कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तज् ज्ञानं जत ब्रह्मा परं विदन्ति। माताजी, एष सद्म उपवने शमेत्य सनात कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या अलभतमलं तत् ज्ञानं जत ब्रह्मा परं विदन्ति। समेत्य उपवाने समेत्य यह राजा सोसदमा अपने महल में उपवने उद्यान में समेत्या भेंट करके कुमारम सनत कुमार भगवंतम पूज्य एकम अकेले आराध्य पूजा कर भक्त्या भक्तिपूर्वक अलभत प्राप्त करेगा अमलम कल्मश रहित निर्मल तात वह ज्ञानम दिव्य ज्ञान जता जिससे ब्रह्मा आत्मा परमा परम दिव्य विदन्ति जानते हैं भोगते हैं। अनुवाद रात्रि जयशील प्रभुपाद जी के। जयशील प्रभुपाद, यह राजा पृथु अपने प्रसाद के उद्यान में चार कुमार में से एक सनत कुमार से भेंट करेगा। राजा उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा और उनसे सौभाग्यवश उपदेश प्राप्त करेगा जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। तात्पर्य, विदंति शब्द का अर्थ है वह जो किसी वस्तु को जानता है या उसका आनंद उठाता है। जब मनुष्य को गुरु से सही ढंग से उपदेश प्राप्त होता है तथा वह दिव्य आनंद का आनंद को समझता है तो वह जीवन का सुख पा सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न खंकेति। जब ब्रह्म पद प्राप्त होता है तो मनुष्य के न कोई आकांक्षा रह जाती है और न उसे शोक होता है, वो वास्तव में दिव्य आनंद उठाता है। यद्यपि राजा पृथु विष्णु का अवतार था, वह अपनी प्रजा को शिष्य परंपरा से आए गुरु से उपदेश ग्रहण करने की शिक्षा देता था। इस प्रकार कोई भी इसी भौतिक जगत में रहते हुए आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में आगत विदंति क्रिया का अर्थ कभी कभी जानते हैं किया जाता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को अर्थात प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत को जानता है तो वह आनंदमय जीवन बिताता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्रुं तुम्जना तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभेश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पापनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छय गोसाई करी चरण वंदन जाहिते विघ्न नाश अभीष्ट प्र। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते सै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरुवे गौरचंद्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः नमः। उन्नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गुरु भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्भिरिम पुरा विभू निर्माय सोते जद्मुरुष पुरुष भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मक षोडंकृशिष्ट भगवान वचंसि मे षोडंकृशिष्ट भगवान वचंसि मे षोडंकृशिष्ट भगवान वचंसि मे। श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री गौर निताय श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्रील प्रभुपाद आप सभी वैष्णव की कृपा से कुछ भगवत श्रीमद भागवत की आज कक्षा में कुछ चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सभी की आशीर्वाद बनी रहे। आप सभी भागवत कक्षा में उपस्थित होने के नाते आप सभी को धन्यवाद है। ये लंबी दिन से कथा चल रहा है, किसी अध्याय जो 16 अध्याय की चौथा स्कंद की बंदी जन के द्वारा राजा पृथु की स्तुतियां हैं। बंदी जन भगवान पृथु महाराज प्रकट हुए हैं, प्रकट होने के नाते बंदी जन उनका स्तुतियां गा रहे हैं। करीबी ये लास्ट होने वाला स्तुतियां हैं। उन्होंने उनकी गुण कृति आगे क्या क्या करेंगे इनकी स्तुति इसमें गाया जा रहा है। लगता है भगवान की लीला तो आगे हो गए, वो क्या क्या करेंगे अभी हुआ नहीं, कुछ नहीं किए। वो आगे जो उनका करने वाले चीज है वो पहले से वो वर्णन हो रहा है, ऐसा ऐसा करने वाले हैं आगे जाए कि ये भगवान की लीला के विशेष महिमा है। हम जहां भी देखें रामायण की भी लीला की, भगवान राम की लीला होने के पहले से वाल्मीकि जी लिख ही दिए थे भगवान आगे ऐसा ऐसा लीला करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसा ऐसा होगा, उसी की लीला मध्य भी वेदव्यास वर्णन किए हैं, सुखदेव उसमें वर्णन किए बाद में, किंतु शास्त्र में पहले से लिखा हुआ ऐसा ऐसा लीला करने वाले जा रहे। इस प्रकार बंदी जन के मुख में ये सो प्रकट हो रहा है, स्तुति आ रहा है, भगवान लीला किए नहीं, अभी क्या क्या करने वाले आगे होंगे वो लीला पहले से लिखा जा रहा है। ये है इसलिए भगवान की लीला पहले से ही वर्णन हुआ है, भगवान इसके ऊपर लीला करते, जैसे संसार में कोई व्यक्ति संसार में ड्रामा करते हैं, वो ड्रामा किताब में आधार पर लिखा होता है, किताब में लिखा गया ऐसा ऐसा ड्रामा करना है, उनको एक्टर होते उसको ड्रामा को प्रैक्टिस करते वो ड्रामा करते, उसको लीला कहा जाता है। संसारी की जो कर्म होते, संसारी कर्म करने वाला व्यक्ति को पता नहीं होता मैं क्या करूं आगे जाए, मेरा जीवन क्या होगा, कैसे बिताएगा, वो सब पता नहीं रहता है संसारी जीव को कर्म करने के टाइम, किंतु भगवान की जो लीला, भगवान को सब पहले से पता होता है, भगवान सर्वज्ञ है। और वो केवल भगवान को पता नहीं होता है, भगवान की जो महान भक्त होते हैं वो उनको जानते भगवान ऐसा ऐसे लीला करने वाले हैं। ये बंदीजन, ये साधारण बंदीजन नहीं थे जिनकी गुण स्तुति करते राजा महाराज की, ये बंदीजन ऐसे महान भक्त हुए जो भगवान की लीला आगे क्या होगा वो वर्णन कर रहे हैं, और उसी के ऊपर भगवान लीला करते, इसको ड्रामा करते भगवान ये धरती में ऐसा ऐसा करने वाले। पहले नंबर श्लोक में बंदीजन बोलते हैं ये जो राजा है ये सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, आगे जाकर ये 100 अश्वमेध, हाँ सरस्वती नदी उद्गम स्थल पर जहां पर सरस्वती नदी प्रकट हुए वहां 100 उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। राजा नहीं किए थे किंतु पहले से उनका गुण स्तुति में गार है, और राजा पृथु महाराज किए आगे जाकर भविष्य से क्या करने वाले उनका गुण स्तुति वर्णन किया जा रहा है। और अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग के राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े घोड़े को चुरा लेगा, ये इंद्र आएगा इसे चोरी करेगा भविष्य में, या करके वो सोचा होगा ये 100 यज्ञ कर रहा है शायद मेरा इंद्रपद ले जाएगा, हाँ ऐसा ही शास्त्र में निर्देश है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उनको स्वर्गों की इंद्रपद मिल जाता है। और वो इसी प्रकार विचार रखेगा अरे ये तो राजा इंद्र की मध्य समझ में नहीं आया, हाँ ये भगवान की शक्ति वैसे अवतार है भगवान के अंश भी, ये उनको मालूम नहीं समझ नहीं पाते भगवान की माया शक्ति ऐसा ही प्रबल है, इंद्र जैसा देवराज के मध्य भी मोहित कर सकता है। और वो आकर के भगवान पृथु महाराज के घोड़े को चुरा लिया, ये आगे करेगा राजा यज्ञ करेगा इंद्र ऐसा ही चोरी करेगा, ये बात बंदीजन अभी उनकी स्तुतियां में गा रहे हैं। राजा प्रकट हुए, जस्ट भगवान प्रकट हुए, अब प्रकट होने के नाते उनको इसे स्तुति करी गा रहे हैं बंदीजन को, आगे ऐसा ऐसा होने वाला है। नेक्स्ट श्लोक में 25 नंबर श्लोक में ये बता रहे हैं, आओ जो 25 नंबर श्लोक की अनुवाद है मेरा पीछे थोड़ा दोहराइए, यह राजा पृथु अपने प्रसाद के उद्यान में चार कुमार में से एक सनत कुमार से भेंट करेगा, राजा उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा और उनसे सौभाग्यवश उपदेश प्राप्त करेगा जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। या आगे सनत कुमार को ही अपनी गुरु बनाएंगे, अपनी गुरु बनाएंगे और गुरु बनाएंगे, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं वो तो भगवान विष्णु के अंश थे, स्वयं विष्णु थे, हाँ विष्णु के अंश से प्रकट हुए थे, किंतु उन्होंने गुरु बना आ रहे हैं। इसे लोगों को शिक्षा देने के लिए, प्रजा को शिक्षा देने के लिए हम गुरु ग्रहण करें, गुरु से ज्ञान प्राप्त करें, और प्रामाणिक गुरु से जो भगवान से जुड़े हुए कनेक्टेड है भगवान से, उनसे भगवान से प्रतिनिधि, हाँ जो भगवान की प्रतिनिधि गुरु बना कर की उनसे ज्ञान ग्रहण करे और वो ज्ञान दूसरा को दे। पृथ्वीराज अपनी प्रजाओं को शिक्षा देंगे, वो कैसा देंगे, अपनी बुद्धि से नहीं दे रहे, भगवान है स्वयं संपूर्ण ज्ञान उनके पास है, सब कुछ मालूम है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, किंतु एक आचार्य एक आदर्श राजा के हिसाब से उन्होंने आचरण करी दिखाते हैं, ये भगवान की महान भक्त हैं, सनत कुमार भगवान की ज्ञान शक्ति के अवतार हैं, वो भी भगवान की ज्ञान शक्ति के अवतार सत्यावेश अवतार है, सनत कुमार को कहा जाता है, उनसे कैसे ज्ञान लेकर उन्होंने, पर उनकी पहले से सनक सनातन है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, और प्रथम ब्रह्मा जी की चारी कुमार प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी प्रकट कराए थे, उनसे वो ज्ञान ले रहे, ज्ञान लेकर की तो प्रजा को शिक्षा देंगे, ये आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए परंपरा बहुत जरूर है, इसके कहने का तात्पर्य यह है, यदि ज्ञान हम कहां से ग्रहण करेंगे, किसी मार्केट से कि गीता पुस्तक दुकान बिका जाता है उसे खरीदी करी पढ़ के कोई ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, ज्ञान को एक प्रामाणिक भगवान से ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो भगवान की प्रतिनिधि से रिप्रेजेंटेटिव गुरु आचार्य से ग्रहण करना चाहिए, यह है आदर्श परंपरा, तभी सही यथारूप ज्ञान हमको मिल सकता है, नहीं तो लोग भ्रमित हो जाते। कुछ दिन पहले एक भक्त मेरे पूछा, ये जो लोग परंपरा से नहीं होते हैं, और खबर इस्कॉन की भक्त लोग को कौन शुद्ध भक्ति करेंगे और भगवान को धाम जाएंगे, और ये लोग जो जप करते हैं भजन करते हैं, इतना बोल रहे हैं गा रहे हैं, बहुत सारी ऐसे ही कीर्तन भी करते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, एक एक संस्था संस्था पर आचार्य बनी की संस्था बना कर की बहुत सारी शिष्य ग्रहण कर रहे हैं, ये लोगों की क्या उद्धार नहीं होगा, भगवान धाम को नहीं जाएगा। ज्यादातर यही हुआ है, आज तक देखा जाता है जितना परंपरा को छोड़ की परंपरा से ज्ञान नहीं ग्रहण करके ऐसा ही संस्था बनाया, वो संस्था बनाए कि शिष्य परंपरा ऐसा ही बनाते हैं, वो सब पाखंड विद्या ही सिखाते, भले ही हरिनाम ले रहे हैं, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण की भजन भी करते हैं, राधे राधे कीर्तन करते हैं, किंतु वो पाखंड विद्या की ही प्रचलन करते, ये शास्त्र कहा था पाखंड विद्या वो लोग प्रचलन को, शास्त्र अनुमोदित विद्या नहीं है, स्पेकुलेशन कहते मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक चिंतन मानसिक विचारधारा वो समाज के लिए प्रस्तुत करते, अपने अपनी बुद्धि लगाते, क्यों, अब वो भगवान से शिक्षा लाभ नहीं करते, भगवान से सीखे न तो भगवान के प्रतिनिधि से सीखे, वो परंपरा धारा से नहीं आते, इसलिए पाखंड विद्या धारण करने वाला व्यक्ति भगवान धाम कैसा जा सकता। मैं उनको बोला, वो इंजीनियर था, बोलता आप तो इंजीनियर है ना, हाँ मैं इंजीनियर बेटे कर ही रखा हूं, बहुत सारी लोग भारत में आज भी हैं, 80-90% लोग मिलेंगे जो कोई प्रामाणिक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई भी नहीं करते, और बिना पढ़ के इधर उधर सीख कर के मध्य अपनी बुद्धि लगाएगी इंजीनियरिंग विद्या, जैसे व्हीकल इंजीनियरिंग हो, गाड़ी रिपेयरिंग करने में मिस्त्री बन जाते, किंतु ऐसा मिस्त्रियों को कोई प्रामाणिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं दिया जाता, उनको प्रोफेसर नहीं बना जाएगा, वो सीख लिया थोड़े बहुत काम कर लेता है, किंतु उनको प्रामाणिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोई कॉलेज में जाकर के वो टीचर नहीं बन सकता, प्रोफेसर लेक्चर नहीं बन सकता, वो केवल ऐसा ही काम करेगा जो अनऑथराइज काम, ऑथराइज हिसाब से देखा जाता है, आपको पढ़ना पड़ता है सिस्टम यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, यूनिवर्सिटी सिलेबस में सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ता है, तभी वो इंजीनियर को स्वीकार किया जाता है, हाँ ये सही है, उनको नियुक्ति मिलता है, गवर्नमेंट सर्विस भी देता है, कॉलेज सर्विस नौकरी भी देता है, तभी माना जाता है हाँ ये प्रामाणिक रूप में, और जब तक प्रामाणिक रूप में ऐसा ही कोई इंजीनियर विद्या सीख लिया वो कैसा इंजीनियर बन सकता, इसको नहीं कहा जाएगा प्रामाणिक रूप में ही सीखा। इसी प्रकार प्रामाणिक परंपरा से भगवान से जो नई शिक्षा प्राप्त किया तब तक वो गुरु आचार्य नहीं हो सकता। गुरु आचार्य होने के लिए एकमात्र प्रामाणिक परंपरा चाहिए। इस्कॉन की कोई एक भक्त के साथ में वो संतुल नहीं हो सकता। इस्कॉन एक प्रामाणिक परंपरा है जोड़ा हुए आमर सौभाग्य की बात है। हाँ, शिलो प्रभुपाद जैसा हमारे आचार्य मिले हैं, गौरांग महापुरुष की चैतन्य महापुरुष की शिक्षा धारा है जो धारा संसार में किसी परंपरा में नहीं। शिलो प्रभुपाद अपने मुख में बोले उपदेशामृत में, जब तक भगवान गौरांग महापुरुष के चरण कमल का आश्रय नहीं लिया तब तक राधा कृष्ण की गुह्यतम लीला को प्रवेश नहीं कर सकता, कि राधा कुंड की महिमा को नहीं समझ सकता। यदि कोई राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए चाहता है और राधा कुंड आदि वृंदावन की असली महिमा को समझने के लिए चाहता है वो गौरांग महापुरुष के शरण में जाना चाहिए और उनकी भक्तों की शरण में जाना चाहिए। बहुत बड़ा विद्वान था, कवि में पंडित था, भगवान चैतन्य महापुरुष की लीला में एक बंगाल से एक पंडित कवि भगवान चैतन्य महापुरुष को भेंट करने के लिए गया था। बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत में पैर बनाते था, अलग अलग स्वर को उच्चारण करता था, किंतु वो चाहता था मेरा अपने पंडित्य, मेरा विद्वान, मेरा कवित्व, मैं अलग अलग स्वर को लेख कर भगवान चैतन्य महापुरुष को सुनाऊं, भगवान चैतन्य महापुरुष मेरा स्वर को सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे, खुशी हो जाएंगे, आनंद लेंगे। चाह रहा था भगवान चैतन्य महापुरुष, क्योंकि चैतन्य महापुरुष को एक नियम था, जो भी कविता जो भी पंडित सुनाने के लिए आएंगे उनको स्वरूप दामोदर जी भगवान चैतन्य महापुरुष के जो सेक्रेटरी थे वो टेस्ट लेंगे, उनकी टेस्ट के बाद में उन्होंने जो पास कर लेंगे तब जाएंगे चैतन्य महापुरुष को सुना सकता था। जब तक उनकी स्वरूप दामोदर की रिकमेंड नहीं हुआ तब तक वो सुना नहीं सकता। स्वरूप दामोदर जी की वो जो पंडित जी थे महापुरुष की पार्षद एक भगवान आचार्य थे, माने भगवान पंडित थे, उनको जान पहचान थे, उनके माध्यम से जो भगवान पंडित थे उनके पास जाकर ही बोले मेरे को थोड़ा से व्यवस्था कर दीजिए, मैं जैसे ही भगवान को सुना सकता हूँ मेरा कविता, हाँ सुंदर सुंदर संस्कृति प्यार सुना सकता हूँ। भगवान जो पंडित थे, पंडित भगवान थे, वो रिक्वेस्ट करते थे स्वरूप दामोदर जी को, देखो ये बंगाल से पंडित आए हैं, विद्वान है, इनके पास बहुत सुंदर सुंदर कविता बोलते हैं और रचना भी कर लेते हैं, वो चाहते कुछ प्यार सुनाने के लिए महाप्रभु को, आप थोड़ा उनको रिकमेंड कराए दीजिए। किंतु स्वरूप दामोदर जी जानते थे, बोले ये जो पंडित बाहर होते विद्वान होते भगवान की भक्ति रस को कैसा मालूम होगा, ये तो बाहर लोग है, ये कोई परंपरा से जुड़े नहीं है, हाँ कोई प्रामाणिक भक्तों से जुड़े नहीं हुए, भक्तों से संगति नहीं करते, ऐसे ही संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ी भगवान की ऊपर कविता रचना करते, भगवान की गुणगान की जो कविता रचना किए, भगवान तो ये सब रसभास होने वाले हैं, ये सब भगवान इसमें सुनने से सुख प्राप्त करने और नाराज होंगे, वो मना करते थे, नहीं नहीं अब भगवान बोले आप तो वाले हैं, अब द्वादश गोपाल में थे, बोले आप नहीं समझ जाएंगे, मैं जानता हूँ, आप थोड़ा उन लोगों को दूर रखो। किन्तु उन्होंने जो भगवान पंडित जी तो थे वो बार बार रिक्वेस्ट करते थे स्वरूप दामोदर जी, आप सुन लीजिए ना, एक बार तो सुन लीजिए महाप्रभु की परिकर के सामने थोड़ा आप सुनिए। महाप्रभु का परिकर और भी थे, बड़े बड़े विद्वान थे, भक्त भी थे, और जो पंडित को बुला कर जब बार बार उनकी रिक्वेस्ट हुआ उनके सुनने लगे, बोले क्या पंडित या पहले मेरे को सुना, तो महाप्रभु तो बाद में सुनेंगे, और महाप्रभु के भक्त लोग भी बैठे थे वो भी विद्वान थे सब, उन्होंने संस्कृत की प्यार गाने लगे, जगन्नाथ की भगवान चैतन्य महाप्रभु की समतुल्य करके उन्होंने श्लोक उच्चारण कर श्लोक गाए, और सब पंडित क्या क्या इतना संस्कृत विद्वान है, हाँ भगवान की गुण को लीला को इस प्रकार वर्णन कर लेते सुन की सब प्रसन्न है, किंतु स्वरूप दामोदर तुरंत उनका श्लोक में त्रुटियां पकड़ ली। बोले देखो ये है त्रुटियां, आप लोग ऐसे कैसे मान लेते सब सही सही बोल रहे हैं, गलत बोल नहीं बोल रहे हैं, इसके गलती देखो है कैसा गलती कर रहा है। वो पंडित को बुलाकर बोले तुम्हारा ये जो विद्या पंडित बहुत अच्छा है किंतु सिद्धांत बात की नहीं है, सिद्धांत बात तभी पता चलेगा यदि आप भगवान चैतन्य महाप्रभु की चरण कमल, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण कमल अविचल भक्ति करेंगे। भागवत को एक भगवान के भक्तों से सुनेंगे, भगवत जो सिद्धांत है भगवान की जो भक्ति है वो भागवत सिद्धांत को एक भक्तों से श्रवण करेंगे। भागवत पढ़ गया भागवत स्थान है, भागवत पढ़ना है एक व्यक्ति भागवत श्रवण करना पड़ेगा, डायरेक्ट ग्रंथ लेके पुस्तक पढ़ी विद्वान है पढ़ के बोले भागवत कोई समझने के लिए प्रयास करेगा नहीं हो सकता। भागवत मतलब एक व्यक्ति भागवत होता है, एक ग्रंथ भागवत है, ये चैतन्य इसकी तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद लिखे है प्रथम स्कंद भागवत की, जहां पर लिखा है भागवत नित्यम भागवत सेवया, प्रथम स्कंद में लिखा है ना नित्य भागवत सेवा करने के लिए लिखा है, सुनुतम सुकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, हाँ नित्य भागवत सेवा करने के लिए जहां लिखा गया श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे भागवत दो होता है, एक भागवत ग्रंथ भागवत, एक भागवत व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत के पास जाकर कि ग्रंथ भागवत को समझो, नहीं तो भागवत ऐसे कोई डायरेक्ट जाके पढ़ेगा वो भ्रमित हो जाएगा, अपनी बुद्धि लगाएगा मैं संस्कृत विद्वान हूँ संस्कृत पंडित हूँ मैं भागवत श्लोक को एक अर्थ को समझा सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ, वो समझ नहीं सकता। भागवत को पढ़ना होगा तो एक व्यक्ति भागवत से, भगवान के महान भक्तों से बैठकर उनकी चरण कमल आश्रित होकर की दीक्षा आदि संस्कार होकर की उनकी चरण आश्रित होकर जब भागवत पढ़ेगा सुनेगा तो ये ग्रंथ भागवत को समझ सकता है, डायरेक्ट कोई ग्रंथ भागवत को नहीं समझ सकता। इसलिए तो भ्रमित है, बड़े बड़े मिशन खुल के रखे हैं, बड़े बड़े संस्थापक संस्थापक आचार्य बने, लाखों करोड़ शिष्य बना के प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलते भगवत गीता भागवत की कंठस्थ भी करी रखे, किंतु समस्त हुए भगवान कौन है, भगवान निराकार है ज्योति है प्रकाश है। इतना बड़ा बड़ा संस्थापक आचार्य होकर साउथ इंडिया में देखा इतने लोग को लाखों लोगों को प्रवचन करते श्रीमद भागवत की चर्चा भगवत गीता के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, किंतु गीता पर प्रवचन करते हुए भी भगवान कौन है, निराकार है। जहां पर वेद व्यास महाभारत हो कि भागवत हो कि अष्टादश पुराण हो, किसी भी जगह पर वेद व्यास लिखने का टाइम है जो भगवान बोलते हैं श्री भगवान वाच लिखते, अर्जुन बोलते अर्जुन वाच, धृतराष्ट्र बोलते धृतराष्ट्र वाच, संजय जाकर संजय वाच, सभी के नाम धर के लेते ये कहा, किंतु कृष्ण उवाच श्री राम उवाच ऐसे कभी जाकर नहीं बोला। जहां पर भगवान बोल रहे हैं भगवान श्री भगवान में श्री भगवान उवाच लगा के लिखते हैं, साथ साथ कोई ऐसा पुस्तक नहीं है वेदव्यास ये गलती करी रखे, किंतु मूर्ख जनता जो मूर्ख पाखंड होते हैं वो भगवान लिखा गया वेदव्यास लिख रहे हैं, श्री कृष्ण उवाच नहीं लिख रहे श्री भगवान उवाच लिख रहे, वो शब्दों को देखते हुए भी ये अक्षर देख उनके दृष्टि में नहीं देख, देखते हुए भी देख नहीं पाते, यही अज्ञान वो परंपरा में नहीं है, प्रामाणिक गुरु स्वीकार नहीं किए, कोई वैष्णव के चरण में आश्रित नहीं हुए, और अपनी बुद्धि लगाए दिमाग लगाए अपनी दिमाग लगाते लगाते लगते पूरी दुनिया घूमे। भारत में ऐसे एक पाखंड था पूरे भारत को दुनिया घुमा गुरु ग्रहण करने के लिए, गुरु मिलेगा गुरु मिलेगा गुरु मिलेगा गुरु मिलेगा, ढूंढते 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 एक ऐसे अवैष्णव से जाकी सरकार को फिर गुरु ग्रहण कर लिया, मेरे को इतना गुरु दर्शन स्पर्श करा दिया, भक्ति तो कोई सीख नहीं पता नहीं। जब भगवान के शरण में कोई आता है वास्तविक उनको सदगुरु मिलते, कृष्ण कृपाते सदगुरु मिलते, कृष्ण कृपा है जिनको होता है वो सदगुरु उनको मिलता है। जब भगवान के शरण में कोई जाता ही वास्तविक सदगुरु उनको मिलता है। जैसा ही भगवान को ढूंढने के लिए नाबालक माने बहुत बच्चा थे ध्रुव महाराज, भगवान ढूंढने के लिए आए थे, भगवान कृपा से उनको सदगुरु नारद जी मिल गए और गुरु कृपा से कृष्ण, कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं। पहले कृष्ण की कृपा होता है, कब कृष्ण की कृपा होता है जो अज्ञान भाव से भगवान श्री कृष्ण के शरण में आता और दूसरी किसी शरण में नहीं जाता। यदि कोई गुरु की शरण में जाएगी ऐसे गुरु ढूंढते ढूंढते जाएगा वो पाखंड गुरु मिल जाएगा उनको, किंतु कोई भगवान की शरण में जाता है, भगवान की जो शरण जाता है भगवान मेरे को सही मार्ग दीजिए, सही रास्ता दीजिए, भगवान उनको ऐसा मार्ग दिखाते इसी रास्ता में ले जाते, भगवान डायरेक्ट ना आकर अपनी प्रतिनिधि को भेजते, भगवान की जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव गुरु को भेजते उनको रास्ता दिखाने के लिए, जैसे नारद जी को भेज दिया रास्ता दिखाने के लिए ध्रुव महाराज। ये परंपरा है, यही शास्त्र की सिद्धांत है। भगवान को छोड़ के यदि दूसरा दूसरा गुरु ढूंढता है उनको भ्रमित गुरु मिल जाते हैं, पाखंड गुरु मिल जाते, वो शिक्षा क्या दे, क्या भक्ति करेगा। इसलिए प्रमाण की परंपरा चाहिए। वो भक्त के मन में प्रश्न हुआ, वो कौन भगवान धाम को नहीं जाएंगे, इतना नाम ले रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं और भगवान धाम को नहीं जाएंगे। बोला हाँ, नाम भगवान धाम को जाएंगे, ऐसा शास्त्र में कहा गया। नामाभास जो जिनकी होता है, नाम के आभास होता है, अपराध होता है ना, नामाभास होता है, वो मध्यम भी उनको मुक्ति के द्वार मिल जाता है, उनकी मुक्ति के द्वार मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्ति नहीं मिलता, शुद्ध भक्ति के नहीं मिल सकता। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त की आवश्यक है, उनके चरण को आवश्यक है। शुद्ध भक्ति और भगवान धाम को जाने के बाद अंतर क्या है, भेद पता होना चाहिए हम सभी, नहीं तो भक्तों के अंदर में यही जिज्ञास होता है, शुद्ध भक्ति और ये क्या। जैसा ही किसके पास पैसा हो वो अमेरिका जा सकता है, किंतु पैसा है तो अमेरिका चला गया, किंतु अमेरिका में जाएगी अमेरिका के प्रेसिडेंट साथ में हाथ मिला नहीं सकता, उनके घर में रुक नहीं सकता। अमेरिका प्रेसिडेंट पास मिलाना के जाने होगा तो अमेरिका प्रेसिडेंट के आदमी के साथ आपका संपर्क होना चाहिए, उनसे कोई रिलेशन होना चाहिए, तभी अमेरिका प्रेसिडेंट घर में जाएंगे रह सकते, उनकी ये कर सकते। इसी प्रकार भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो सेवा है, उनकी जो पार्षद शरीर है परिक्रमण, उनकी चरण सेवा करना है भगवान से, भगवान की भक्तों से कनेक्शन होना चाहिए, उनके पार्षद से कनेक्शन होना चाहिए, उनसे संबंध होना चाहिए। हाँ आपके साधन है, तपस्या है, भजन करते हैं, किंतु वो साधन भगवान की पार्षद शरीर नहीं दिलाएगा, अपना भगवान की नाम उच्चारण वो भी भगवान की पार्षद शरीर नहीं दिलाएगा। कितना नाम लो, कितना भजन करो, वो भगवान की पार्षद बन की भगवान की चरण सेवा नहीं दिलाएगा, भगवान की भक्ति नहीं दिलाएगा। भगवान धाम दिला सकता है, भगवान की वैकुंठ दिला सकता है, हाँ चिदाकाश को जा सकते, चिन्मय धाम को जा सकते, किंतु भगवान की पार्षद शरीर चाहिए तो आपको भगवान की पार्षद की संगति, उनकी अनुगति, उनकी शरणापन्न होना पड़ेगा, उनसे रिलेशन रखना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति का जो उद्गम होता है भक्तों से होता है, भक्ति की जो शुरुआत होता है भक्तों की संगति से होता है। एक सेवक वो दूसरा को सेवा करने का टेक्निक दे सकता है, बता सकता है ऐसा सेवा किया जा सकता है, जो सेवक नहीं है वो भगवान भक्ति कैसा सिखाएगा। इसलिए जितना परंपरा विहीन है, परंपरा विहीन है, ऐसा ही जो आचार्य संस्थापक आचार्य बने की संस्था की आचार्य के हैं, पाखंड विद्या सिखा रहने वाले हैं, संस्था बनाए, इतना बड़े बड़े संस्था बनाए कि राधे राधे बोल रहे हैं, ये सभी कोई एक भगवान धाम में भगवान परिकर नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, पार्षद से नहीं मिल सकता। क्यों? तो भगवान धाम जा सकता है, अपनी तपस्या यदि सही कर रहा है, आचरण सही कर रहा है, आचरण करी भगवान के नाम ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, शुद्धता है, भगवान धाम जा सकता है, किंतु भगवान की परिकर पार्षद नहीं बन सकता। भगवान की परिकर पार्षद के लिए भगवान की जो परंपरा, जो शिक्षा पद्धति, उनकी भक्तों की अनुसरण करना, जी उनकी चरण का आश्रित होना ये बहुत जरूरी है। इसलिए तो महाप्रभु रूप गोस्वामी बताए हमको, भक्ति रसामृत सिंधु की सनातन गोस्वामी बताए, वैष्णव सदाचार्य की इस ग्रंथ बनाने की दीक्षा लेना कैसा लेना है, परंपरा क्या होना चाहिए, उसका दर्शन शास्त्र महाप्रभु ये रास्ता बनाया, परंपरा से शिक्षा लेने के लिए महाप्रभु निर्देश दिया। इसीलिए सारी अवतार की, भगवान की जितना अवतार हुआ है, सारी अवतार की सार जो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, सबके सार है। उन्होंने प्रेम भक्ति दिए, किसी युग में किसी अवतार में महाप्रभु भगवान ये टेक्निकी भक्ति की, शुद्ध भक्ति का, भगवान की पार्षद बन की उनकी चरण सेवा करने का ये नहीं दिया था, किसी अवतार में नहीं दिया था। इसलिए सारी अवतार की सार है शिक्षा देने के लिए, समाज के लिए, संसार जीव के लिए, ये बद्ध जीव के लिए, मेल्छ जवन मुसलमानों के लिए मध्य भी, जो भी, जो शुद्ध भक्ति देने के लिए गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, सारी अवतार के सार है। ये चीज रहस्य हमको समझना चाहिए, सारी अवतार के सार, उन्होंने ये चीज को दिया, परंपरा शिक्षा कैसे भगवान की, राधा कृष्ण की नित्य लीला सेवा कैसा कर सकते, चार ही भाव दिया, संसार में नचाऊंगा, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दासी सख्य वात्सल्य माधुर्य रस दे करके भक्तों को भगवान से जोड़ाऊंगा, जोड़ा करके उनकी प्रेमा भक्ति दूंगा, उनकी कृष्ण धाम दिलाऊंगा, गोलक धाम दिलाऊंगा, सर्वोच्च भक्ति दिलाए। गौरांग महाप्रभु की पहले कोई राधा कृष्ण पूजा नहीं करते थे, भगवान श्री कृष्ण की तो अपनी पौपुत्र ब्रजरणव ब्रज में आकर की ब्रज को संस्कार को माने ब्रज को लुप्त तीर्थ को उद्धार किए, कुंड घाट आदि मंदिर बनवाए, गोविंद जी गोपीनाथ मदन मोहन आदि मंदिर बनाकर उन्होंने स्थापन किए, किंतु कृष्ण की पूजा करने के लिए बताए, राधा रानी के साथ में नहीं, राधा कृष्ण के विग्रह पे सेवा नहीं दिया था। ये है गौरांग महाप्रभु की देह है, राधा कृष्ण की प्रेम दान, सब प्रेम भक्ति, ये भक्ति शुद्ध भक्ति ब्रज भाव, ये सब उनकी देह, मतलब किसी अवतार, भगवान राम आए थे, अब देखो रामलीला पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण, दशरथ महाराज शरीर छोड़ के कहाँ गए, स्वर्ग गए, स्वर्गवास किए, उसमें क्या सीखेंगे संसार समाज क्या सीखेगा, जब उनकी भगवान की पिताजी शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जा सकते हैं, आओ ये संसार समाज क्या सीखेगा। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं पुण्य होने से स्वर्ग लोग जानते, पुण्य खत्म होने से ब्रह्म भवन आलोक पुनरावर्तन अर्जुन, पूरे ब्रह्म लोग तो जाकर पूर्ण संसार को आना पड़ेगा, स्वर्ग क्या है, ये जो स्वर्ग लोग तपस्या करके ये करके स्वर्ग लोग जाएंगे, पुनः संसार को आना पड़ेगा, कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है, जीवात्मा के कल्याण नहीं हो सकता, असली कल्याण नहीं, कल्याण के मतलब ये जीवात्मा संसार से बंधन से मुक्त होकर की भगवान की धाम पूजा, वो बारे में कोई चर्चा नहीं। यदि भगवान की पिताजी जाएगा और कौन जाएगा, दूसरा जीव क्या, इसलिए किसी अवतार में ये सब चीज नहीं सीखा मिला, एकमात्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु, उन्हीं की कृपा उन्हीं की अनुदान है हम इस रहस्य को समझे और कृष्ण की धाम पूजा। इसलिए सभी को भगवान गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की संदेश को समझना है, उनकी लीला पढ़ना है, उनकी चरण में भक्ति अविचल भक्ति करना चाहिए, और जैसा कि हमारे भागवत सिद्धांत को हम समझेंगे और हम भक्ति करेंगे और दूसरी के मध्य भक्ति का चीज बताएंगे। भगवान श्री प्रभुपाद हमारे आचार्य गौरांग महाप्रभु की आदेश को प्रचार किए, उनकी संदेश को विदेश प्रचार गए, गौरवाणी प्रचारिणी, गौरांग महाप्रभु की वाणी प्रचार किए, ऐसे गौरांग महाप्रभु की वाणी, ये जो भागवत की सिद्धांत है, जो सार है, वो चीज को आप सभी प्रचार करना है। इतना आप लोगों के चरण में निवेदन है, हम लोग को तो भक्ति करते हैं, किंतु गौरांग महाप्रभु की इच्छा है, जा रहे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, जिसको देखते कृष्ण के उपदेश जो संदेश है वो सिद्धांत देकर कृष्ण भक्त बनाना, और गौरांग महाप्रभु जो संदेश है शुद्ध भक्ति को दिलाना, ये सभी की चरण में प्रार्थना है। यदि कोई बोलने में गलती होगा तो माफी कर देना है। और जय श्रील प्रभुपाद की, जय नित्यानंद महाप्रभु की, जय श्रील प्रभुपाद की, भागवत की जय हो। नित्याय गुरु प्रानंदे हरि हरि बोल। और